भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामनि गौरात्वेषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितमृत की श्री श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र गौर निताय श्री प्रभुपाद के चरणों में पंजाबी बाग में सोमवार के नव वर्ष के आगमन में चैतन्य चरितमृत के सत्संग में प्रातः काल आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री चैतन्य नव वर्ष कल आ जाएगा ना। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 11वें अध्याय में बेड़ा कीर्तन लीला। तो ओडिशा से कोई भक्त है, बेड़ा का अर्थ क्या है मालूम है? बेड़ा कीर्तन ओडिशा से है ना? हाँ, तो बेड़ा को ओडिशा वाला जानेगा, और कोई नहीं उसका अर्थ जानेगा। बेड़ा कहते हैं चार दीवारी को, तो जगन्नाथ मंदिर की चार दीवारी के अंदर का कीर्तन बेड़ा कीर्तन का मतलब। चैतन्य महाप्रभु ने 200 भक्त मायापुर से बंगाल से जो आए थे उनके संग जगन्नाथ के मंदिर में कीर्तन किया, मंदिर के अंदर प्रांगण में कीर्तन किया, तो वो बेड़ा कीर्तन। लेकिन वो कीर्तन तो आएगा 200 श्लोक के बाद, नाम अध्याय का वो है, लेकिन कीर्तन का वर्णन तो बाद में आएगा। अब वर्णन क्या चल रहा है, महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा चेतना महाप्रभु का दर्शन चाहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रार्थना की, चेतना महाप्रभु ने कहा नहीं राजा विषय ये मैं दर्शन नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा मैं प्राण रख के क्या करूं, महाप्रभु का दर्शन नहीं मिले तो मैं जी के क्या करूंगा। तो इतनी देर इतने समय में रामानंद राय आ गए, वो थे गवर्नर दक्षिण भारत के, चेतना महाप्रभु से मिले थे। महाप्रभु ने कहा रिटायर हो जाओ, आओ तो जगन्नाथ में बैठ के हरि कथा करेंगे। उन्होंने गवर्नर का पद को त्याग दिया और प्रताप रुद्र ने कहा कि मेरे चेतना महाप्रभु ने कहा है कि मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा और यहीं उनके संग में बैठ के हरि कथा कीर्तन करूंगा। प्रताप रुद्र बड़े प्रसन्न हो गए कि चेतना महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपका रिटायरमेंट पूरी पेंशन के साथ। और रामानंद राय ने ये बात आके चैतन्य महाप्रभु को बताई कि मेरे को उसने सेवा से निवृत्त भी कर दिया है और पूरी पेंशन भी दी और आपका बहुत गुणगान कर रहा था आपका नाम सुनते ही। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो मेरे भक्तों से इतना स्नेह करता है तो कृष्ण निश्चित उसके ऊपर कृपा करेंगे। इसके ऊपर तात्पर्य है, आपने सुना होगा कि भगवान से भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, राजा को कैसे आप प्रसन्न करो, क्या दोगे राजा को कि आप खुश करो? राजा तो राज का मालिक है, आप कौन सा उसको उपहार दोगे? लेकिन उसके बच्चे को चॉकलेट दे दो तो राजा खुश हो जाएगा, है ना? उसके बच्चे को छोटा सा उदाहरण कोई चीज दे दो तो राजा खुश हो जाएगा। तो भगवान के भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। इसके बाद 200 भक्त हर साल सेवानंद सेन के साथ चेतना महाप्रभु का दर्शन करने आते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा तक रहते थे, दो एक महीना रहते थे आके पुरी में। तो वो सब भक्त आने लगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रताप रुद्र कहते हैं कि इन सब का मुझे आप पहचान कराओ। तो कहते मुझे तो इतना इनका परिचय नहीं है, ये गोपीनाथ जी आचार्य हैं, ये सबको जानते हैं। तो ऊपर छत के महल की छत के ऊपर राजा देख रहे हैं, ये अद्वैत आचार्य आ रहे हैं, इसका चैतन्य महाप्रभु आदर करते हैं, ये वो भक्त आ रहे हैं, इसका नाम ये भक्त है, ऐसे करके सब भक्तों का नाम लेके सुना रहे हैं। और ये सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास सीधे गए और चैतन्य महाप्रभु ने, रामानंद का भाई है वाणीनाथ, भावानंद का पुत्र, आप अलानाथ गए हैं ना कभी? अलानाथ से 1.5 किलोमीटर अंदर रामानंद राय का जन्म स्थान है, वो गांव है जहां भावानंद का घर है। और चैतन्य महाप्रभु का मतलब उनका जो उस वक्त का एक तलवार है और कुछ सामान भोजपत्र के ऊपर कुछ लिखा है वो अभी उधर पड़ा है, हम इस साल गए थे तो उधर देखा था उसको। तो अलानाथ के किसी से पूछेंगे तो पास में 1.5 किलोमीटर अंदर उधर ही पास में है, गांव है। तो बहुत सा प्रसाद लाए, चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा कि आप समुद्र में स्नान करके आओ, फिर प्रसाद खाओ और फिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाओ। तो राजा को आश्चर्य लगा कि कोई तीर्थ में आता है तो तीर्थ का पहला नियम है कि एक दिन का व्रत रखे। भगवान रामचंद्र गंगा जी के तट पे जब आए थे वनवास के काल में तो कहा कि आज कुछ नहीं पाएंगे, गंगा जल का पशुपान करेंगे, आज व्रत रखेंगे और सिर मुंडवाना चाहिए, ये दो तीर्थ के नियम हैं। अभी हम भी यहाँ से हरिद्वार आदि तीर्थ जाते हैं तो रास्ते में 6 जगहों पे रुकते हैं और नाश्ता करते हुए जाते हैं, ऐसे इसका नियम नहीं है। तीर्थ जाना है तो संकल्प करके वहां जाके तीर्थ का स्नान करके व्रत करना चाहिए, ये तीर्थ का नियम है। तो राजा ने कहा तीर्थ का नियम है, पहले तो सिर मुंडवाना चाहिए। आपने देखा है जो तिरुपति जाते हैं सारे गंजे होकर आते, लगता है इस्कान के भक्त है, तिरुपति ने तो वैसे इस्कान के भक्त सब लगते, जब वापस आते लगते हमारे भक्त हैं, या कहीं कोई मर जाता है तब सब सर मुंडवाते लगता है ये सब भक्त बन गए हैं, लेकिन होते हैं थोड़े दिन के लिए भक्त होते हैं, ये टेम्पररी भक्त है। और प्रसाद तो खाना ही नहीं चाहिए, व्रत रखना चाहिए, ये राजा ने पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा देखो ये नियम जो होते हैं ये सामान्य लोगों के लिए होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं राग मार्ग में वो इन नियमों से ऊपर होते हैं। अब ये प्रसंग चल रहा है इन 4 श्लोकों में, क्या प्रसंग चल रहा है कि तीर्थ का शास्त्र का नियम पालन करना चाहिए कि भगवान का आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ स्नान करो और प्रसाद खाओ। तो अब क्या इन दोनों में कौन सा महत्व है, ये प्रसंग ये चल रहा है। तो ये कुछ श्लोक पढ़ेंगे फिर ये श्लोक आएगा, 13वां श्लोक 100 पढ़ते। ईश्वरेरा प्रोक्ष आज्ञा क्षोरा उपशणा, ईश्वरेरा प्रोक्ष आज्ञा, प्रोक्ष कहते हैं किसको, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब शास्त्र में भगवान ने ये आज्ञा की है, क्षोर करो का मतलब बाल कटवाओ तीर्थ में, और तीर्थ में क्या करो, उपोषण, आप उपवास रहो, उपवास रखो, उपवास रखो, ये किसका नेम है, शास्त्र का नेम है, ये इनडायरेक्ट है, अप्रोक्ष है। प्रभुर साक्षात आ गया प्रसाद भोजन, और प्रभु ने साक्षात कह दिया कि भोजन करो। अब दोनों में किसका आज्ञा पालन करें? तब आपको दो तीन उदाहरण याद आने चाहिए। शास्त्र ने कहा है सच बोलना चाहिए। वासुदेव ने वचन किया था कि मैं जितने बच्चे पैदा होंगे आपको दे दूंगा कंस को। जब कृष्ण ने कहा कि मेरे को मथुरा से गोकुल ले चलो, तो फिर बस वासुदेव ने क्या किया? सच बोला कि गोकुल छोड़ के आए कृष्ण को? बोला कृष्ण ने कह रहे हैं, साक्षात भगवान कह रहे हैं इसकी आज्ञा का पालन करूं कि मैं अपने वचन की बात करूं या शास्त्र की बात करूं? भगवान की आज्ञा का पालन किया। शास्त्र कहता है किसी के धोखा मत करो, झूठ मत बोलो, और भगवान श्री कृष्ण कहता है कि युधिष्ठिर महाराज तुम कहो कि अश्वत्थामा हत्वा नरो वा कुंजवा, अश्वत्थामा मारा गया, ये महाभारत की कथा है ना। अब बताओ कि युधिष्ठिर महाराज क्या करे? भगवान की आज्ञा माने कि अपनी बात के ऊपर के मैं सच्चा हूं, सच को पकड़ के बैठ जाए? ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जहां भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो लोकाचार का अथवा शास्त्र के कुछ नियम है उनका उल्लंघन करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कौन सा प्रिंसिपल हमारे उपदेशामृत का है? हाँ, कौन सा ये नेम है? हायर पर्पस के लिए लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस किया जाता है, नेमाग्रह जो है उसके अंतर्गत आता है। नेम भगवान की सेवा के लिए, अगर भगवान कहता है तो फिर सारे नेम उसके नीचे आ जाते हैं, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये शास्त्र का सिद्धांत है कि भगवान जब साक्षात आज्ञा कर रहा है तो फिर अब दूसरी आज्ञा तो अपनी जगह पे है शास्त्र की, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना। आगे कहते हैं तहां उपवास यहां नहीं महाप्रसाद। अब दूसरा कारण बता रहे हैं कि उपवास वहां करने चाहिए जहां महाप्रसाद न मिले। इससे बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको कहीं भगवान को भोग लगा हुआ वैष्णव शुद्ध प्रसाद नहीं मिले तो उपवास रखो। उपवास वहां है जहां प्रसाद न मिले। प्रभु आ गया प्रसाद त्याग है अपराध। प्रभु की आज्ञा है कि प्रसाद खाओ और कोई प्रसाद नहीं खाए, ये तो अपराध है, ये तो अपराध है। कहते जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं रखते, एकादशी जगन्नाथपुरी वाले नहीं रहते हैं। तो श्रीपाद वल्लभ आचार्य जगन्नाथपुरी में गए, किसी ने उसको प्रसाद दे दिया चावल का। अब प्रसाद नहीं लेना अपराध है और प्रसाद खाने से एकादशी टूटेगी, वो भी उसका अपना नेम है। तो वो सारी रात प्रसाद की महिमा गाते रहे कि महाप्रसाद कितना बड़ा है, भगवान ने कृपा करके दे दिया, ये मर्स महाप्रसाद की कितनी महिमा है। और जब प्रसाद खोलने का एकादशी समय हुआ तब प्रसाद को पा लिया। तो प्रसाद एकादशी का भी नेम पालन किया और प्रसाद का भी अनादर नहीं किया। तो उपवास कब रखना चाहिए? जब प्रसाद नहीं मिले और भगवान प्रसाद दे रहे हैं कृपा करके, तो फिर नहीं खाना भी अपराध है। प्रसाद नहीं खाना अपराध है, प्रसाद को मना करना मतलब भगवान की कृपा को मना करना है। ये कौन बोल रहा है? सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहा है। वो कौन है? बृहस्पति है, जो शास्त्र को अच्छी तरह से जानता है और प्रताप राजा को ये बता रहे हैं। अब आगे एक श्लोक और पढ़ते हैं। अब देखो, कोई बात किसी को कहे वो तो ठीक है, लेकिन फिर अपने जीवन का उदाहरण भी बोलना चाहिए। अब देखें, नारद जी जब उपदेश दे रहे हैं व्यास देव को, तो फिर अपने जीवन का उदाहरण बताते हैं कि मैंने देखो अपने जीवन में 3 जन्म बिताए, गंधर्व था, अपराध हो गया, दासी पुत्र हुआ, भक्तों की कृपा हुई, भक्ति वेदांतों की कृपा हुई और मैं नारद बन गया। तो भक्ति कोई देश काल पात्र से ऊपर है, वर्ण आश्रम से ऊपर है, भक्ति की ये महिमा बता रहे हैं उदाहरण देके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं। विशेष श्री हस्ते प्रभु करे परिवेशन। अच्छा, पहले तो कहते हैं विशेष श्री हस्ते प्रभु करे परिवेशन। वैसे श्री हस्ते का मतलब, वैसे श्री हस्ते का मतलब अपने हाथ से, लेकिन अगर और गहरा जाएंगे, अगर रोज आप क्या गाते हैं, श्री गुरु चरण, तो श्री गुरु ने किसके चरण पकड़े हैं? श्री कौन है? राधा रानी है। तो चैतन्य महाप्रभु, वैसे रसोई की स्वामिनी राधा रानी है, वो उसका ही प्रसाद भगवान खाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में है, और वो श्री के हाथ से, राधा रानी के हाथ से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रसाद अगर मिल रहा है और वो ही परोस रहे हैं, प्रसाद अगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं परोस रहे हैं, एते लाभ छाड़ी कौन करे उपशण, ऐसा लाभ को छोड़ के कौन उपवास करेगा। भगवान अपने हाथों से परोस के प्रसाद खिला कर रहे हैं और फिर कहे कि मेरा उपवास है कोई, तो वो बड़ा नादान है, बेवकूफ है। नहीं, मेरा उपवास है। अरे तेरा उपवास है किसके लिए? भगवान के लिए। वही तो कह रहा है खा लो, तो फिर क्या भगवान की बात मानेंगे कि अपनी जिद को पकड़ के बैठेंगे? बहुत से लोग ऐसे मूर्ख होते हैं। चरणामृत भगवान का लेना चाहिए, नेम है। नहीं, मैं चतुर्मास पालन कर रहा हूं, इसमें दही है, नहीं खाऊंगा। अरे भगवान का चरणामृत है, ये लेना है, नेम उसने बनाया है, उसको क्यों छोड़ना? कुछ महात्मा है, उनका ये नेम है, चरणामृत लेने के बाद ही कुछ खाते पीते, नहीं तो कुछ नहीं करते। पहले चरणामृत लेते हैं, फिर अपना जीवन शुरू करते हैं। तो ये नेम जो हैं वो ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन जहां भक्ति प्रमुख हो, भगवान अपने हाथों से अगर दे रहे हैं तो फिर नेम काय का। भगवान परोस रहे थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं, और लिखा है कि एक एक की प्लेट पे तीन तीन आदमी का परोस रहे थे, एक आदमी का नहीं, तीन आदमी जितना परोस रहे थे। ऐसे महाभारत में लिखा है कि जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था, तो भोजन परोसने का काम भीमसेन को दिया गया। बोला क्यों, पे खाता ज्यादा है तो देगा ज्यादा, कम से कम बच्चे किसी को दो तो वो चम्मच से देगा, अभी हमारे को चम्मच से देगा तो काम कैसे चलेगा। तो परोसने वाला कम से कम बड़ी दिल वाला होना चाहिए, जिसको मां की तरह बच्चे को खिलाने में देने की इच्छा हो, परोसने वाले को बड़ा उधार होना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु परोस रहे हैं तो कौन मूर्ख है जो उपवास रखेगा? ये कह रहे हैं भट्टाचार्य जी, आगे कह रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे हैं। पूर्वे प्रभु मोर प्रसाद अनानी दिला। कितना एक समय की बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे प्रसाद ला के दिया, और मैं अभी तक उठा नहीं, बिस्तर के ऊपर बैठा था, नाया धोया नहीं था, बैठा हुआ था, और प्रभु ने आके मुझे प्रसाद दिया। आप लोग जगन्नाथपुरी में सर्वभौम भट्टाचार्य के घर गए होंगे, अंदर जब जाएंगे भट्टाचार्य के घर में, और श्वेत गंगा के सामने, तो वो जगह है कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम बैठे थे, आपस में सात दिन प्रवचन किया था वो, और उसके अंदर से एक कमरे में महाप्रभु रहे थे एक तरफ, दूसरे तरफ से नीचे से गुफा है, वो गुफा एक तो जाती है सीधी जगन्नाथ मंदिर, और एक जाती है प्रताप रुद्र राजा के घर में। इसका मतलब सर्वभौम भट्टाचार्य बाहर पब्लिक के रोड से नहीं जाते थे, मंदिर भी उस गुफा के रास्ते से जाते थे, और राजा मगाता तो भी बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। प्रसिद्ध व्यक्ति की समस्या ये, बाहर निकलता है, दस आदमी राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको जहाँ जाना होता है 15 मिनट में, वो पहुँचता है 1.5 घंटे में। रास्ते में लोग स्पीड ब्रेकर जैसे हैं, ऐसे गिर जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए रास्ता अलग होना चाहिए। ऐसा उनके दो गुफाएं आप देख के अंदर, वो गुफाओं को बुख देखा, वो अभी बंद पड़ी हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मैं अपने घर में बैठा था, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे अन्न प्रसाद ला के दिया। अन्न प्रसाद का मतलब चावल, जगन्नाथ जी के। प्राते सयाय वसी, मैं तो अभी सुबह सवेले अपनी खटिया के ऊपर बैठा था, सैया बैठी के मतलब अपने पलंग पे बैठा था। अमी से अन्न खाईला, मैंने तो ऐसे ही न मुंह धोया, न हाथ धोया, न स्नान किया, उस प्रसाद को खा लिया। अब उदाहरण दे रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने अपने हाथ से चैतन्य महाप्रभु में प्रसाद दिया, तो मैं उस प्रसाद को छोड़ के बोलूं नहीं मैं स्नान करूंगा बाद में खाऊंगा, नहीं। ये एक ही चीज है, चरणामृत और प्रसाद, वो खड़े खड़े आप खा सकते हो, खड़े मिले तो खड़े खा लो, नहीं तो पानी भी खड़े नहीं पीना है। खाना तो खड़े कभी खाना ही नहीं चाहिए। ये जो रोड के ऊपर सारे ऊंट की तरह और गधे की तरह जहां चाहे चरते चरते जाते हैं, बकरी की तरह देखा है, ये कोई मानव का, ये मानव समाज नहीं है, ये पशु समाज है। खड़े खड़े कुछ नहीं खाना चाहिए, नेम ही नहीं है खड़े खड़े खाने का। आपको बताया था पहले ब्रह्मा जी ने जब बनाए पशु तो बकरी चिल्लाने आई, बाबा बहुत भूख लगी है क्या करूं, बोला जो मिले जहां मिले जब मिले खाओ। तो बकरी क्या है, सारा दिन खाती रहती। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, श्री गौर निताय की, जय गौर प्रेमानंदे। तो फिर मानव को भी तो ब्रह्मा जी ने बनाया, तो मानव ने कहा बाबा हमको भूख लगी है पिताजी ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो नेम से खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ बस। तो पुराने लोग जो है सुबह शाम खाते थे बस, और कुछ नहीं करते थे। फिर जब ये पढ़ लिख के गए ना यूनिवर्सिटी से, जो लोग बड़े बुद्धिमान हो गए, तो कह अरे हम कोई बकरी से भी गए गुजरे हैं कि केवल दो टाइम खाए, ये सारा दिन खाती है, हमारा कोई बकरी जितना भी वैल्यू नहीं है, बस हम दो टाइम खाएं और ये सारा दिन खाएं। हम भी जहां आए जो आए जैसे आए खाएंगे, तब से इंसान पशु बन गए। देखा है जो जहां खाता रहता है, कभी नहीं खाना चाहिए, खड़े होकर तो खाना ही नहीं चाहिए। तो दो चीजें खा सकते हो खड़े, चरणामृत और प्रसाद, मिले तत्काल मुख में डालना, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं भगवान का प्रसाद मिला है, ये तो कृपा है भगवान की, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए तत्काल खा लेना चाहिए। तो ये अपने मुख से, अब ये श्लोक है जो लिखा है, इसका पाठ करेंगे। यहां तक हम पहुंच गए, पढ़िए। यहां रे कृपा करी करे ना हृदय प्रेरणा, कृष्णाश्रय हया छाड़े वेदी लोक धर्म, यहाँ रे कृपा करी करे ना हृदय प्रेरणा, कृष्णाश्रय हई छाड़े वेद लोक धर्म, यहाँ रे कृपा करी करे ना हृदय प्रेरणा, कृष्ण आश्रय हया छाड़े वेद लोक धर्म। यारे कृपा कौरी करे न हृदय परेरण, कृष्ण आश्रय हया छाड़े वेद लोक धर्म, यारे कृपा कौरी करे ना हृदय प्रेरणा, कृष्णाश्रय हये झाड़े वेद लोक धर्म। एक माता जी, यारे कृपा कौरे कौरे ना हृदय प्रेरणा, अब इनके श्लोकों को के शब्दों को ध्यान, यारे कृपा करी करे न हृदय प्रेरण। कोई विशेष व्यक्ति है जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उसके हृदय में प्रेरणा देते हैं, हृदय में प्रेरणा देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात है कि भगवान कृपा करते हैं तब हृदय में प्रेरणा देते हैं। ये कौन से भगवान हो गए, ये परमात्मा हो गए, जो कौन है चेतिया गुरु। जैसे गुरु आज्ञा देता है, ऐसे भगवान हृदय से आज्ञा दे। और जिसको ऐसे भगवान हृदय से आज्ञा देता है वो क्या करता है, कृष्ण आश्रय है, वो कृष्ण का शरण ले लेता है। भगवान ने जिसके हृदय में प्रेरणा दी वही भगवान श्री कृष्ण का शरण लेगा। क्या पता लगेगा कि कैसे पता लगेगा इसने भगवान का शरण लिया है, छाड़े वेद लोक धर्म। फिर वो जो वेद के और लोक के धर्म है, जो दुनियादारी पूजा पाठ करता है, वो सबको छोड़ देगा। वो फिर संसारी लोगों की तरह पूजा पाठों के अंदर समय नहीं गंवाएगा, वो सीधा भगवान के शरण में सेवा करेगा। यारे कृपा करी करे ना हृदय प्रेरणा, जिसके हृदय कृपा करके भगवान हृदय में प्रेरणा देता है। या आपने सुना है प्रभुपाद जी के पास एक पत्रकार आया, उनके बहुत सारे पुस्तकों को देखा तो आके पूछा कि ये सब आपने ऐसे कैसे लिखे हैं, थोड़े समय में इस उम्र में इतने सारे पुस्तक आपने लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी शांत रहे, उनके एक शिष्य ने उत्तर दे दिया, भगवान ने प्रेरणा दी, हृदय से भगवान ने प्रेरणा दी तो उन्होंने लिखा। तो पत्रकार ने कहा भगवान ने सीधी हृदय में प्रेरणा दी, इंस्पायर्ड बाय गॉड। बोला एक हजरत मूसा है जिसको भगवान ने प्रेरणा दी थी, उदाहरण एक ही है, एक मूसा जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है उसको भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी थी। तो पत्रकार को आश्चर्य लगा कि ये कोई इतना बड़ा महान मूसा जितना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आर यू इंस्पायर्ड बाय गॉड, भगवान ने आपको प्रेरणा दी? प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो आश्चर्यचकित हो गया, फिर बोला प्रेरणा नहीं दी भगवान ने, गॉड डायरेक्टेड मी, भगवान ने मुझसे लिखवाया। प्रेरणा देने का मतलब मैं लिखूं वो प्रेरणा दे, लेकिन भगवान ने लिखाया और मैंने लिखा। प्रभुपाद के पुस्तक, प्रभुपाद कहते मैंने नहीं लिखे हैं, भगवान ने लिखा है और मैंने लिखे हैं। ये प्रभुपाद जी परंपरा से बात कर रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं गोविंद देव ने लिखाया और मैंने गोविंद भाषा लिखी। कविराज गोस्वामी कहते हैं मदन मोहन ने लिखाया और मैंने लिखी। तो ये परंपरा है, ये है जिनको हृदय में प्रेरणा नहीं दी, भगवान ने सीधा हृदय में उनको आदेश दिया है कि ऐसे करो। ये लोग फिर लोक वेद धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। उदाहरण कौन है लोक धर्म और वेद धर्म को छोड़ने का? गोपियां। गोपियों ने लोक धर्म छोड़ा, वेद धर्म छोड़ा, वो लिखा है शास्त्र, शब्द लिखे हैं शास्त्र में। उद्धव कहता है लोक धर्म छोड़ा, वेद धर्म छोड़ा, आर्य पथ छोड़ा, पुत्र बंधु बांधव सब छोड़ा, लज्जा छोड़ दी, जो स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। लेकिन कृष्ण की प्रेरणा हुई बांसुरी में, हृदय में कृष्ण ने कहा आ जाओ, तो जैसी थी वैसी चली गई। कोई वेद, ये सबसे बड़ा उदाहरण कोई देना है किसने वेद पर का धर्म धोड़ा छोड़ा, तो गोपियों ने छोड़ा, गोपियों ने वो सब छोड़ दिया। और एक और प्रार्थना का मंत्र पढ़ते हैं, अलावरों का है शायद, संध्या वंदन आपको नमस्कार है, पूजा पाठ आपको नमस्कार है, तीर्थ व्रत आपको नमस्कार है, अब मैंने मुकुंद का शरण ले लिया है, अब मेरे पास समय नहीं है। किसने लिखा है ये? माधवेंद्रपुरी। अब माधवेंद्रपुरी को भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी कि नहीं? तीन बार तो सोपन में बोला, पहले बोला मुझे यहां से निकालो, फिर कहते हैं चंदन लाओ, फिर कहते हैं ये चंदन गोपीनाथ को लगाओ। ये हृदय में प्रेरणा का उदाहरण है कि नहीं? सीधा हृदय में प्रेरणा माधवेंद्रपुरी, तो वो ये कहे तो कह सकता है ना। लेकिन आप कल जाके कहो कि भगवान ने कहा है कि हमको पिज्जा पास्ता खाना है, ये नहीं चलेगा। हाँ, तो पहले देखो, पहला जो है कृष्ण कृपा करी हृदय में प्रेरणा दे, आपको नहीं भगवान ने प्रेरणा दी मैं ये खा लूंगा, ऐसा नहीं। पहले उदाहरण ऐसा होना चाहिए। माधवेंद्रपुरी का अगर उदाहरण दे रहे हो तो माधवेंद्रपुरी के प्रेरणा के तीन उदाहरण तो है ना सामने। और ये चेतन महाप्रभु कहते हैं तीन बार भगवान ने साक्षात उनको हृदय से प्रेरणा दी। रूप गोस्वामी के लिए लिखा है कि हृदय से भगवान श्री चेतन महाप्रभु ने प्रेरणा दी। रूप गोस्वामी के लिए दो बार ऐसे लिखा है चेतनाचार्य चरितमृत में कि महाप्रभु ने उनके हृदय से जब ये कहा है तभी वो ऐसे लिखा है। तो इसलिए हम रूप अनोगा है, तो रूप अनोगा का मतलब है कि हम उनके अनुयायी हैं, उनके पीछे चल रहे हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने सीधी प्रेरणा दी, चेतना महाप्रभु ने प्रेरणा दी। रूप गोस्वामी के दो जगह देखिएगा चेतना चरित में लिखा है चेतना महाप्रभु ने सीधा उनको हृदय में प्रेरणा दी। तो उन्होंने वेद लोक धर्म छोड़ दिया। वेद लोक धर्म क्या है? तब आपको क्या याद आना चाहिए? भगवत गीता से कौन सा श्लोक? त्रयगुण्य विषय वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन। सारे वेद तीनों गुणों के, वेदों में है क्या? कर्म कांड है, ज्यादा से ज्यादा 90% तो है कर्म कांड, और कर्म कांड है तीनों गुणों के अंतर्गत। और कर्म कांड का सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वर्ग, वो सतोगुण की प्रवृत्ति है। और फिर ज्ञान कांड है, ज्ञान भी सतोगुण की प्रवृत्ति है, ज्ञान ही भी सतोगुण के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों गुणों में आ गया। और थोड़ा सा उपासना कांड, जरा एक उपासना कांड है जिसमें भगवान की भक्ति का कहीं ना कहीं उल्लेख है थोड़ा बहुत। तो प्रायः वेद धर्म लोक धर्म जो है, और इसको अगर आपको और अच्छा उदाहरण देना है तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद का संवाद है, उसमें कहा कि ये सब धर्म छोड़ो, ये धर्म शरीर का है, ये तो मानव का मुख्य उद्देश्य नहीं है, जो शरीर के धर्म है ये उद्देश्य नहीं है, आत्मा का धर्म है वो उद्देश्य है, हम शरीर हैं, शरीर के सारे धर्म है वो वेद लोक के धर्म है, शरीर के धर्म वेद और लोक के धर्म है ये समझो, और आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान का नित्य दास। आत्मा का धर्म है भगवान का नित्य दास, तो फिर भगवान की सेवा करनी है। शरीर का धर्म है लोक धर्म, शरीर का धर्म है वेद धर्म, तो दो धर्म हो गए। स्वधर्म दो प्रकार के हैं, स्वधर्म दो प्रकार के हैं, वेद स्वधर्म बताता है शरीर का और दूसरा स्वधर्म है आत्मा का। तो जो कृष्ण का शरण लेते हैं वो आत्मा के स्वधर्म का पालन करते हैं। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेता है और फिर किसी और धर्म करने की जब पालन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो शरीर के स्तर से ऊपर है। तो अब इस श्लोक का अर्थ समझ में आया। इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद के शब्दों में पढ़ते हैं अनुवाद से, 17। महाप्रभु जिस मनुष्य के भीतर से प्रेरित करके उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं। अब श्रील प्रभुपाद ने देखो इसमें शब्द क्या लिखा है, यारे कृपा करे, कौन करे नहीं लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखा है महाप्रभु जिस मनुष्य के भीतर से प्रेरित करते हैं। महाप्रभु यहां उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि प्रसंग किसका चल रहा है? महाप्रभु ने उन भक्तों को प्रसाद खाने के लिए प्रेरणा दी, तो इसलिए महाप्रभु जिस मनुष्य के भीतर से प्रेरित करके उस पर अपनी कृपा करते हैं वो केवल भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। बहुत बड़ी बात है, महाप्रभु प्रेरित करते हैं और शरण किसकी ग्रहण करता है? कृष्ण की। अब कोई ऐसा श्लोक आपको कोई याद आता है? दीक्षा के समय क्या लिखा है एक श्लोक याद है? गुरु करे शिष्य करे आत्म समर्पण, किसको? गुरु को। और तब दूसरा लाइन क्या है? तेई काले कृष्ण करे आत्म सम। देख दोनों में फर्क दिख रहा है, हम शरण लेते हैं गुरु का और स्वीकार करता है कृष्ण, प्रेरणा देते हैं महाप्रभु और भक्ति करते हैं शरण लेते हैं कृष्ण का। तो कृष्ण और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, एक तो दोनों इसका अर्थ है कि दोनों एक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदि कृष्ण आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष है कृष्ण। जब कलकत्ता में इस्कान का मंदिर था एक बहुत बड़े जमींदार की कोठी में, तो जमींदार चैतन्य महाप्रभु का भक्त था, तो उन्होंने एक दिन प्रभुपाद के शिष्य अच्युतानंद स्वामी उस वक्त थे, उनको कहा देखो चीनी होती है दूध होता है, एक चीनी है एक दूध है, दोनों को मिला के रसगुल्ला बनते हैं तो रसगुल्ला बड़ा अच्छा होता है। तो उसने कहा ये तो बात सही है। बोला ऐसे चीनी और दूध है राधा कृष्ण, और दोनों को मिला के रसगुल्ला बन गए चैतन्य महाप्रभु, इसलिए बहुत मीठे हैं। उसने अपना भाव से ऐसे बोला, तो अच्युतानंद को समझ में नहीं आया, वो प्रभुपाद जी के पास चले गए। कशिला प्रभुपाद ये जमींदार ऐसे कह रहा है, हमारे जहाँ जिसकी जमीन घर में हम रहते हैं मंदिर है, तो बताइए पहले कौन है? प्रभुपाद ने कहा पहले चीनी और दूध था कि पहले रसगुल्ला था? बोला पहले चीनी और दूध था फिर रसगुल्ला बना। तो बोला जो पहले था वो महान हुआ ना, तो राधा कृष्ण पहले था तभी तो रसगुल्ला बना। ये तो बात समझ में आई, लेकिन महान कौन है दोनों में से? दोनों में से महान कौन है फिर अगर कहा जाए तो? तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर कलकत्ते के मंदिर में फोटो लगा हुआ था, कृष्ण राधा रानी के चरणों को दबा के क्षमा याचना मांग रहे। प्रभुपाद कहते देखो राधा रानी महान है, कृष्ण सेवा कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने दूसरा फोटो देखा जिसमें कृष्ण सर के ऊपर नंद बाबा के चप्पल उठा के आ रहे थे, खड़ा हो बोले देखो नंद बाबा महान है, कृष्ण उसके चप्पल उठा रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने निर्णय दिया भगवान से भगवान का भक्त महान होता, भगवान से भगवान का भक्त महान होता है। अर्जुन भक्त है भगवान है कि कृष्ण भगवान है? रोज गीता वितरण करने जाते भगवान कौन है? बैठा ऊपर कौन बैठा है? ऊपर अर्जुन बैठा है, नीचे कृष्ण बैठा है, तो महान कौन हो गया? भक्त महान हो गया ना, भक्त को भगवान ने ऊपर बैठा दिया, स्वयं नीचे बैठ गए कि नहीं बैठ गए? भक्त महान है भगवान से। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कटाक्ष में कहते हैं ये मायावादी क्या कहते हैं, हम क्या बनेंगे, हम भगवान बनेंगे। प्रभुपाद जी कहते ठीक है इनको भगवान बनने तो हम भगवान के बाप बनेंगे। हम भगवान के बाप बनेंगे तो ये तो हमारे बच्चे हुए ना फिर भी। तो भगवान, भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है। तो इसका भाव यह है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं इसलिए महान है, भक्त के रूप में आए हैं इसलिए महान है, क्योंकि वो कृपा गली गली जाके कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण ने कृपा नहीं की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है, गली गली में जाके हरे कृष्ण मंत्र गा के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे कृष्ण ने नहीं किया। तो महाप्रभु जिसके ऊपर कृपा करके हृदय से प्रेरणा देके कृपा करते हैं वो श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करता है और समस्त वैदिक तथा सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। प्रथाओं का मतलब क्या है? कुछ ऐसे समाज में चलते कोई प्रचलित प्रथाएं, कोई राष्ट्र पूजा पाठ है, कोई उदाहरण देना हो तो बड़ी समाज में प्रतिष्ठित प्रथा थी, किसके समय में? नंद बाबा के समय में। कौन सी? इंद्र की पूजा करने की। अब श्री कृष्ण ने कहा नहीं करो इसकी पूजा, हमारी पूजा करो गोवर्धन के रूप में। तो पुरानी प्रथा छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? सारे ब्रजवासियों ने पुरानी प्रथा को छोड़ दिया और गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई, और तब से गोवर्धन की पूजा अभी तक आती होती आ रही है। तो कृष्ण का शरण ले जा, देखो बात एक बड़ी ध्यान से सुनने की है। कृष्ण ने कहा बंद करो, तुम बंद कर दी, लेकिन इंद्र नाराज होकर बरसात की तो कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके छाता बना के उनकी रक्षा भी की ना। राधा गोविंद पूज्य राधा गोविंद महाराज कभी कहते हैं तुम अगर किसी को कहो कि किसी की पूजा बंद करो तो तुम्हारे अंदर उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना, वो अगर कुपित हो जाए तो तुम पर पहाड़ उठा सकते हो क्या? कृष्ण तो ऐसे कर सकते क्या, तुम ऐसे कर सकते हो क्या? तो अपना जितना जितना सामर्थ्य है उतनी ही आज्ञा देनी चाहिए किसी को, अपने सामर्थ्य से ज्यादा आज्ञा देना ठीक नहीं है। भगवान ने तो गोवर्धन उठा के रक्षा कर ली। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो इसमें मुख्य बात क्या है? सर्वधर्म का त्याग करो, ये भगवान कह रहे हैं। तो सर्वधर्म का त्याग यहाँ क्या लाए, क्या शब्द है? लोक वेद धर्म, ये सर्वधर्म है। तो अब देखो भगवत गीता को अच्छी तरह से देखो तो 4वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं धर्म स्थापना करने आता हूँ, और 18वें अध्याय में कहते हैं धर्म को छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या? एक दूसरे के उल्टा बता रहे हैं क्या? कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं और कौन सा धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्या विचार है आपका? कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं? तब कुंती महारानी की प्रार्थना को पढ़ना चाहिए, भक्ति योग विधान अर्थाय। आपका अवतार होता है भक्ति योग के विधान करने के लिए। याद है किसी को श्लोक की? परमहंसा नाम भक्ति योग विधान अर्थाय, ऐसे कोसे अमलात्मा नाम परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम भक्ति योग, भगवान आते हैं अपनी प्रेमा भक्ति के धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कौन सा धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं? लोक धर्म और वेद धर्म, जो प्रथाएं हैं उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन प्रथाओं में इतने हम फंसे हुए हैं कि जो असली हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको हमने भुला दिया, उसको छोड़ दिया है। सर्वधर्मान परित्यज की कक्षा के कक्षा में कौन भक्त हैं? गोपियां। रासलीला के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, अरे इस आधी घोर रात को इस घोर जंगल में तुम क्यों आई हो? चंद्रमा को देखने आई हो? पूर्णिमा का चंद्रमा, जमुना जी को देखने आई? देख लिया ना, जाओ घर। अरे अपना पति कैसा भी हो, गरीब हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, लेकिन धर्म न त्यागे तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे अपने पुत्रों को छोड़ के आ गई, जाओ वापस घर। ये क्या बता रहे हैं भगवान? लोक वेद धर्म बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लोक वेद धर्म। और गोपियां कौन सी क्लास की हैं? सर्वधर्मान परित्यज की। वो गाती हैं प्रणय गीत, उसके बाद वो प्रणय गीत गाती हैं, इसके बाद है प्रणय गीत। गोपियां कहती हैं, आप कहते हैं पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप ही तो पति हैं, फिर आपको छोड़ के और किसी की सेवा किसकी करें बताइए? हमने तो आपको ही पति स्वीकार किया है। ये आपने कई बार उदाहरण सुना होगा, सामान्य कथा में उदाहरण देने वाला उदाहरण है कि जिस पत्नी का पति परदेश गया है वो इतनी पतिव्रता है कि अपने पति के फोटो को रोज भोग लगा के फिर खाती है, उसी को नमस्कार करती है, काम करती है। फिर पूछती है गोपियां कृष्ण से कि अपना असली पति अगर आ जाए दरवाजे के ऊपर, दरवाजा खटकाए, तो फिर फोटो को भोग लगाना चाहिए, असली पति को भोजन कराना चाहिए? तो भगवान ने कहा भाई असली पति आया तो दरवाजा खोलना चाहिए। बोला यही तो हम कह रहे हैं कि वो मूर्तियां थी जिसको हम पूज रहे थे, आप अभी असली आ गए तो उसको पूजने की क्या जरूरत है, वो तो फोटो था, उसको अभी छोड़ दिया। ये लोक धर्म और वेद धर्म की परिभाषा ये है। और ये छोड़ कौन सकता है? जिसने कृष्ण के, जिसके ऊपर कृष्ण ने कृपा की है, महाप्रभु ने कृपा की है, और जिसने कृष्ण का शरण लिया है वो छोड़ता है, सब नहीं छोड़ सकते। फिर एक प्रश्न और उठता है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अरे वेद धर्म छोड़ेंगे, लोक धर्म चढ़ेंगे तो पाप लगेगा? भाई संध्या वंदन अगर नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, ये वेद का वाक्य है। संध्या वंदन का मतलब त्रिकाल संध्या करनी है। 50 साल पहले हमें मालूम है सब लोग सुबह सवेले उठ के स्नान करके देखो संध्या वंदन करते थे, शाम को संध्या वंदन करते थे, दो टाइम तो करते ही करते थे, तीसरा टाइम नहीं भी करें, ये सब जगह का नियम था। और इसको न करने का प्रतिवाय लगता है, मतलब न करेंगे तो उल्टा असर होगा, आपको उसका पाप लगेगा। तो अगर हम लोक धर्म छोड़े, वेद धर्म चढ़े तो पाप नहीं लगेगा। तब इस श्लोक में भगवान क्या कहा? अहम तुम सर्व पापे भी हो, तुम्हारे पाप की तुम चिंता मत करो। क्योंकि ये भगवान कौन से आधार पे करे? भाई फलदाता तो मैं हूं ना, भाई फल देने वाला तो भगवान है ना, हम तो सिर्फ कर्म करने वाले हैं। वो कहते हैं मैं तो आपको पाप तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने फल छोड़ा क्यों? मेरे लिए छोड़ा है तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। बोला मुक्ति? बोला मुक्ति को छोड़ो, मोक्ष इच्छामि, मैं आपको केवल मुक्ति नहीं विमुक्त, आपको विशेष मुक्ति हमारे अपने धाम में अपना संग दे दूंगा। मैं आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा तो फिर आपको कहीं दुखी होना थोड़ी पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक का उद्धृत किया और इस श्लोक का सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम डरो मत। ये डरो मत भी भगवान ने मां सुचा, शोक मत करो। इसका मतलब पुराने जितने हमारे घरों में प्रचलित रीत रिवाज है उसको छोड़ने में हमें डर लगता है, पता नहीं नाराज हो जाए, ये हमारे दादा के जमाने से पूजा हो रही है। लोग बहुत ऐसे कहते हैं हमारे घर में ये देवी देवता बहुत जमाने से कुल देवता बैठे हुए हैं, इसको निकालेंगे तो पाप लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं डरो मत, हमें डर लगता है, बहुत से लोगों को डर लगता है। हमसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ऐसे हम कितने हमारी 3 पीढ़ी से हमने पूजा करते आए हैं ये देवी देवता की, अब हम आप कहते हैं कृष्ण की भक्ति करो और इन सबको छोड़ दो, ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे? तो हमने तो उनको उदाहरण दिया, भाई लड़की होती है 18 साल तक 20 साल तक अपने बाप के घर में रहती है, अपने बाप को ही सब कुछ समझती है, माँ को सब कुछ समझती है, उनकी सेवा करती है घर की, लेकिन जिस दिन पति मिलता है शादी हो जाती है तो वो पति के घर जाती है, माता पिता की सेवा छोड़ती है, तो माता पिता नाराज होते हैं क्या? हाँ, माता पिता खुश होते हैं कि अपने घर जाके सुखी हो, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ऐसे ही वो देवी देवता हमारे मानो माता पिता की तरह हैं, हमने उनकी पूजा की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले, अब उसकी सेवा में लग गए तो ठीक है, कभी कभार दिन दाम में कोई जन्मदिन उनका है उस दिन आ गए तो घर में आ गए तो आ गए, नमस्कार कर लिया, लेकिन पति के घर में रहेंगे तो वो नाराज थोड़ी होते हैं। तो ऐसे ये कुछ नाराज नहीं होने वाले हैं, ये हमारे दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है, वो नाराज नहीं होंगे, वो खुश होंगे कि ये सही जगह पे गया है। अभी तक तो दुनिया का सुख हमसे मांग रहा था, बेचारा फंसा हुआ था दुनिया में, अब वो भगवान की शरण में चला गया, वो उसको आशीर्वाद देंगे। और ऐसे भी समझना चाहिए कि उनकी इतनी सारी पूजा की है इतने सालों तक, तब उन्होंने कृपा करके आपको भगवान की भक्ति दी है, तो उनका आशीर्वाद मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, लेकिन उनकी पूजा छोड़ने से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो खुश होंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ऐसी अटल श्रद्धा भगवान की कृपा से ही हो सकती है। ये बहुत भारी शब्द है, ऐसी ऐसी अटल श्रद्धा भगवान में, ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकती। लोगों को प्रचार करने के लिए क्या लिखा है चैतन्य चरितमृत में, जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है वो लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या क्या है शब्द? हाँ, कृष्णा शक्ति बिना नाही ताए परिवर्तन। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब, अब कृष्ण की कृपा होगी, आपका अटल विश्वास होगा तभी तो दूसरे को कृष्ण का भक्त बना सकोगे, आपका अटल विश्वास होगा तभी ये काम हो सकता है। तो अटल विश्वास इतना होने के लिए भी कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है। भगवान हरेक के हृदय में आसीन है, और जो वे अपने भक्त को स्वयं प्रेरित करते हैं तब भक्त वैदिक या सामाजिक मान्यताओं की परवाह नहीं करता, प्रत्युत वो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगा देता है। अब भगवान सबके हृदय में है तब कैसे बैठे हैं परमात्मा के रूप में, तब काम क्या है? उपदृष्टा अनुमंता भरता भोगता महेश्वर है, ये तो सबके हृदय में ऐसे करते हैं, लेकिन जब भक्त के ऊपर कृपा करते हैं तो उसके लिए वो परमात्मा फिर नहीं रह जाते हैं, फिर सौहृद बन जाते हैं, उसका हितेशी बन जाते हैं, उसको फिर संसार के कामों में लगने नहीं देते और अपनी सेवा में लगा लेते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वही परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में सबके हृदय में 8 उंगल का है, 8 इंच का है, वो भक्त पे हृदय में त्रिभुंग ललित श्याम सुंदर बन जाता है, और फिर बहुत हृदय से मीठी मीठी बांसुरी के द्वारा उसको प्रेरणा ऐसे देता है जैसे गोपियों को कृष्ण ने प्रेरणा दी और सब लोक धर्म और सब छोड़ दिया। तो भगवान सबके हृदय में है लेकिन प्रेरणा सबको नहीं देते, देखते रहते हैं टुकुर टुकुर ऐसे क्या कर रहा है, उपदृष्टा देखते हैं, साक्षी हैं बस, लेकिन भक्त के लिए वो समोहम सर्वभूतेषु न मे भक्तेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय, मैं सबके अंदर है बराबर हूं, किसी कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, लेकिन भक्त के लिए क्या है, उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है, फिर मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं, उसका तो मैं हाथ पकड़ लेता हूं और उसको मैं उंगली पकड़ के चलाता हूं, फिर वो अपने मत नहीं चलता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से कभी कोई कहते थे कि आप हमारे सेंटर में पधारिए तो कभी नहीं कहते मैं आऊंगा, कहते जब कृष्ण चाहेगा, कृष्ण इच्छा, इसका मतलब वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करते थे, कृष्ण इच्छा। एक भक्त हमारे पास आता है जो कोई वो राम भक्त है, बोला राम इच्छा से, राम इच्छा से कोई काम करेगा, राम इच्छा से, मतलब भगवान की इच्छा को ही मानना है, अपनी इच्छा स्वतंत्र नहीं है। तो ये बात है कि भगवान फिर उसको अपनी भक्ति में लगा देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक में है। ये श्लोक, ये चेतना चरित में तुम्हें कोई भी बात को पुष्टि करनी है तो प्रायः भागवत के श्लोकों का उल्लेख किया है। तो इसके बाद भागवत का श्लोक है, वो अगले सोमवार को आप पढ़ेंगे। और ये श्लोक भागवत का जो है चौथे अध्याय, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय में प्रचेताओं को, प्राचीन बरहित और प्रचेताओं को नारद जी उपदेश दे रहे हैं। ये नारद के उपदेश का श्लोक है कि भगवान किसी के ऊपर कृपा करता है तो फिर उसको जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में आसीन भगवान के द्वारा प्रेरित होता है तब वह न तो सामाजिक रीतों की न ही वैदिक विधानों की परवाह करता है। ये श्लोक है। तो इस श्लोक को आप सोमवार को पढ़ेंगे, अगले सोमवार को। तो आज के कथा में भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके हृदय में भगवान, ये असल में ये स्तर ईमानदारी से सही माना में कहा जाए तो ये स्तर भाव के स्तर पे भक्त होता है, उसी में ऐसे गुण दिखाई देंगे। साधन के ऊपर ये गुण दिखाई नहीं देंगे, साधन के ऊपर नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब निष्ठा से ऊपर चला जाए और भाव का उदय हो जाए तब ये संभव है सारा। ये जो भाव में भक्त हैं वो ऐसे कौन सा एक महाप्रभु की पूजा, गौर निताय की पूजा करते थे और चोर लेके गया बर्तन खाने का, उनको भोग लगाने की थाली ले गया, तो वो महात्मा कहता है आप लोगों की मैं सारा दिन सेवा करूं, पूजा करूं, भिक्षा लाके रोटी पका के खिलाऊं, अपने बर्तन नहीं संभाल सकते तो आज आपका खाना बंद है, चुप करके बैठे रहो। भाई भगवान को बोल रहा है अपना बर्तन नहीं संभाल सकते हो, नहीं आज कुछ नहीं खिलाऊंगा। और चोर को प्रेरणा दी वो चेतना महाप्रभु ने, वो थाली चेतना महाप्रभु वापस ले आया और जाके मंदिर में रख गया, बोलो ठीक है तुम्हारे लिए बनाता हूं, तुम अपना बर्तन का बंदोबस्त करो लाने का। तो ये जो भक्त होते हैं इनका भगवान हृदय में ये जो स्तर होता है, इस स्तर के ऊपर ये बातें, हम वो दोबारा कह रहे हैं कि ये बातें बहुत ऊपर के स्तर की है। कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि चेतना महाप्रभु की आज्ञा से ये कर रहे। देखो ये नेम ऐसा है, वृंदावन हम जाते हैं ना, पुराने जितने भक्त आते थे वृंदावन, पहले मथुरा में भूतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है क्योंकि वो क्षेत्रपाल है, उससे आज्ञा लेके, जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो पहले लिंगराज में जाते हैं क्योंकि वो वहां का क्षेत्रपाल है, वहां से प्रार्थना करके पूजा करके फिर जाना चाहिए उनसे आज्ञा लेके धाम में। लेकिन ऐसे जगन्नाथपुरी का भी ये नियम है कि भाई उधर जाए तो पहले स्नान करे, व्रत करे, बाल कटाए, फिर भगवान का दर्शन करे, फिर दूसरे काम करे। लेकिन ये जो राग मार्ग के भक्त है सीधे चेतना महाप्रभु के पास सीधे चले जाते थे, जगन्नाथ के मंदिर में बाद जाते थे, जब चेतना महाप्रभु आदेश देता था तब जाते थे। और ऐसे हमारे भी भक्त ऐसे हैं, अभी कोई भूतेश्वर महादेव नहीं जाता है, खुद ही भूत बन गए तो भूतेश्वर महादेव जाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये परंपरा हमारे को अब याद नहीं रहेगी, हम इतने आकर्षित सीधे वृंदावन में जाते हैं, लेकिन जाने से पहले रास्ते में जरूर एक दो जगह रुकते हैं और नाश्ता करके जाते हैं, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृंदावन जाना है तो वृंदावन जाना है, कहीं नहीं रुकना है, कुछ नहीं खाना है, वहां जाके भगवान का दर्शन करना है। अब तो जमुना जी का स्नान करना भी सबको भूल गया, पहले तो जमुना जी में स्नान करना अनिवार्य हुआ करता था, अब हमारी बुद्धि इतनी, हमारी इतनी चेतना दूषित हो गई है कि हमको जमुना जी भी पॉल्यूटेड नजर आती। यमुना जी तो शुद्ध है लेकिन हमारी दृष्टि जितनी जितनी हमारी चेतना दूषित होती है उतनी जमुना जी दूषित दिखती। तो आज के श्लोक से हमने क्या सीखा है कि शुद्ध भक्ति के रास्ते में आने से बाकी सारी संसार के नेम रीति रसम, उसको नमस्कार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए शुद्ध भक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए तो फिर ये कोई आपत्ति नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? जी चित चेतना है और मन हमारा अंतःकरण, करण कहते हैं इंद्री को, हमारी बाहर की करण है आंख नाक कान जीभा और ये चमड़ी, ये है ज्ञान इंद्रियां। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी बाहर, पांच कर्म इंद्रियां हैं, ये बाहर करण है। अंदर के करण है चार, अंतःकरण है चार, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। और चित्त है दूषित चेतना, मटीरियली पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। ये भागवत के अंदर इनको अंतःकरण चार बोला है, सामान्य हम तीन बोलते हैं लेकिन भागवत में चौथा अंतःकरण है चित्त। और चित्त है दूषित चेतना, और इसी चित्त को हमको कृष्ण भावना बनाना है। ये जो कृष्ण भावना है ये तो चित्त को हमको बदलना है। और चित्त का इन चारों का एक अधिपति देवता है, जैसे अहंकार का देवता है संकर्षण, मन का मैं समझता हूं चंद्रमा है, चंद्रमा है के अनिरुद्ध है, और बुद्धि का प्रद्युम्न वासुदेव चित्त का, वासुदेव चित्त का ऐसे अनिरुद्ध प्रद्युम्न है। चंद्रमा भी मन के ऊपर, कोई मन के ऊपर चंद्रमा का भी प्रभाव है, वो भी कहीं है। अनिरुद्ध मन अनिरुद्ध और बुद्धि का प्रद्युम्न, अहंकार का संकर्षण और चित्त का वासुदेव, ये इनके अधिपति देवता है, शास्त्र में ऐसे लिखा है। तो ये चार है अंतःकरण, ठीक है। तो ये चेतना है, किसी जमाने में हमारे को ऐसे समझ में आता था कि मन के दो भाग हैं, एक में सारे शब्द कोश है और एक में सारे फोटो हैं। जो फोटो है उसको चित्त कहते हैं, जैसे हम कहें रसगुल्ला, ये शब्द हो गया लेकिन मन के अंदर रसगुल्ले का फोटो आ जाएगा तो वो चित्र हो गया। तो वो भी एक असल में पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस भी मन का ही एक दूसरा भाग है, ऐसा पहले हमको समझ में आता था। लेकिन अब तो चेतना, चौथा चेतना, और ये चारों को कभी कारण शरीर कहते हैं क्योंकि ये दूसरे शरीर लेने का कारण है। इसको कारण शरीर भी कहते हैं क्योंकि दूसरे शरीर लेने का कारण है। लेकिन ये भाषा जो है ये ज्ञानियों की भाषा है, तो हम भक्त कभी इसको उपयोग में लाते नहीं है, इसलिए हमको ये कभी ज्यादा दिमाग में अटकती नहीं है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ जी,
जैसे हमारा पर्सनली प्रश्न है कि अगर हम जैसे जब जाते हैं कहीं किसी धाम के अंदर, तो अगर व्रत वगैरह जैसे जगन्नाथपुरी में अगर हम जाते हैं, अगर हम व्रत वगैरह एकादशी अगर किए हैं तो उस समय कुछ वहां जाकर के खा लेना चाहिए, व्रत वगैरह तोड़ देना चाहिए या
नहीं? नहीं, हमको व्रत रखना चाहिए। अब एकादशी को हम जगन्नाथ थे तो जगन्नाथ में हम एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। जो वहां धाम वासी है, जिनको वहां जन्म मिला है, उनको ये अधिकार मानो दिया है जगन्नाथ जी ने कि नहीं रखो तो नहीं रखें, लेकिन हम तो साधन कर रहे हैं इसलिए हमको रखना चाहिए, हमको वहां व्रत रखना चाहिए। निश्चित रूप से एकादशी का व्रत रखना चाहिए और आदर देना चाहिए। वो कर रहे हैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि तुम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो धाम में है तो उनको भगवान ने वो सौभाग्य दिया है, रखे ना रखे उनकी मर्जी, लेकिन हमको रखना चाहिए।
थैंक यू ब्रो।
पक्का रखना चाहिए। वैसे हम साधन भक्ति कर रहे हैं इसलिए हमको साधन में नियम से चलना चाहिए, कहीं नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भक्ति के नियम का तो कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गौरंग महाप्रभु की, नित्यानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।